अध्याय 9 आंकड़े संग्रहण एवं प्रेक्षण की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। व्यवहार परक विज्ञान में शोध समस्या के एक उत्तम एवं वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने के लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता के पास शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रहण के लिए उपयुक्त विधि हो। यदि विधि उपयुक्त न होगी तो शोधकर्ता शोध समस्या के बारे में सही सही आंकड़ा संग्रहण नहीं कर पाएगा और तब वह उस समस्या का सही उत्तर भी नहीं ढूंढ पाएगा। मनोविज्ञान, शिक्षा एवं समाजशास्त्र के क्षेत्रों में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें शोधकर्ता शोध समस्या का अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करके उपयुक्त आंकड़े संग्रहण करने के लिए उसके पास कोई विधि नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज। व्यवहार परक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाजशास्त्र में शोध समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े अंग संग्रहण करने के लिए कुछ खास खास विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी विधियों में से निम्नांकित 10 विधियां महत्वपूर्ण हैं जिसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। 1. प्रेक्षण विधि, 2. रेटिंग मापनी, 3. प्रश्नावली एवं अनुसूची, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, 4. साक्षात्कार, 5. केस अध्ययन विधि, 6. विषम विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस, 7. समाजमितीय विधि सोशियोमेट्रिक मेथड, 8. प्रेक्षपीय विधि प्रोजेक्टिव मेथड, 9. अर्थगत विभेदक मापनी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, 10. क्यू शॉर्ट विधि क्यू शॉर्ट मेथड। इनमें से प्रत्येक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अलग अलग अनुच्छेदों में करेंगे। पैराग्राफ चेंज। प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रेक्षण विधि के स्वरूप नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। आंकड़े या प्रदत्त संग्रह के प्रविधि के रूप में प्रेक्षण सर्वाधिक पुरातन तथा आधुनिक शोध विधि है। प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य एवं श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देख सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़ा संग्रहण करते समय शोधकर्ता यह प्रत्यक्षण करता है कि लोग क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं तथा वह जो कुछ भी देखता एवं सुनता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका बाद में सांख्यिकीय विश्लेषण कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। विभिन्न शोध वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण विधि को विभिन्न विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। यद्यपि इन वैज्ञानिकों द्वारा बतलाए गए अर्थ में थोड़ी भिन्नता है, फिर भी प्रेक्षण का एक मान्य एवं संतोषजनक परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन प्रदत्त या आंकड़े डेटा संग्रहण के रूप में एक ऐसी प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों से संबंधित उन व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन एवं कूट संकेतन किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों से संगत होते हैं। पैराग्राफ चेंज। यदि इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो हमें प्रेक्षण विधि के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य प्राप्त होंगे। 1. प्रेक्षण विधि में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाता है। यहाँ विशिष्ट परिस्थितियों का एक खास अर्थ यह है कि प्रेक्षण विधि का उपयोग विशेषता उन स्थानों या परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ प्रेक्षण किए जाने वाले प्राणी अपना अधिकांश समय स्वाभाविक रूप से व्यतीत करते हैं अथवा जो परिस्थितियाँ उनके लिए परिचित एवं स्वाभाविक हैं उसमें वे अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता या शोधकर्ता प्राणियों के स्वाभाविक व्यवहारों नेचुरल बिहेवियर के अध्ययन पर बल डालता है। स्वाभाविक व्यवहार को उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहार की परिस्थिति भी स्वाभाविक हो, अर्थात एक बिल्कुल ही स्वाभाविक परिस्थिति हो, जैसे शिक्षक एवं बच्चों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का यदि अध्ययन किया जाना हो तो यह आवश्यक है कि इसका प्रेक्षण एक वर्ग या कक्षा में किया जाए या अन्य ऐसी परिस्थिति में किया जाए जहाँ शिक्षक एवं छात्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हों। पैराग्राफ चेंज। 2. प्रेक्षण में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी ऑर्गेनिज्म से मतलब मानव तथा पशु दोनों से होता है। अक्सर छात्र भूल से समझ बैठते हैं कि प्रेक्षण से सिर्फ मानव के ही व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान एनिमल साइकोलॉजी में ऐसे अनेकों अध्ययन किए गए हैं जिसमें शोधकर्ता पशु के व्यवहारों का निरीक्षण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। 3. प्रेक्षण में प्राणियों के व्यवहारों का चयन सिलेक्शन उत्तेजन अभिलेखन तथा कूट संकेतन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रेक्षण में चार प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कूट संकेतन। चयन से तात्पर्य यह होता है कि चाहे जिस परिस्थिति में जिसका भी प्रेक्षण क्यों न किया जाए, प्रेक्षणकर्ता प्राणियों द्वारा परिस्थिति में किए गए अनेकों व्यवहारों में से सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए चुन लेता है जो शोध के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं या उद्देश्य से संगत तो होते हैं। दूसरी उपक्रिया उत्तेजन की है। यहाँ उत्तेजन से तात्पर्य प्रेक्षणकर्ता द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा सूक्ष्म एवं परोक्ष हस्तक्षेप से होता है जिससे प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार में काफ़ी अस्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। तीसरी उप प्रक्रिया अभिलेखन की होती है। अभिलेखन में शोधकर्ता या प्रेक्षणकर्ता इस बात का रिकॉर्ड करता है कि प्राणियों द्वारा कौन व्यवहार कितनी बार किस रूप में कितने समय तक और कितनी प्रबलता के साथ हुई है। प्रेक्षणकर्ता इस बात का भरपूर कोशिश करता है कि वह इन व्यवहारों को एक क्रमबद्ध रूप से अभिलेखन कर सके। चौथी प्रक्रिया कूट संकेतन का है। कूट संकेतन से तात्पर्य अभिलेखित आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण से होता है। प्रायः इस प्रक्रिया में प्रेक्षणकर्ता कुछ सांख्यिकीय विधियों स्टैटिस्टिकल टेस्ट का भी सहारा लेता है। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रेक्षणकर्ता प्राणियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक विशिष्ट परिस्थिति में करके उनके प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रेक्षण करते समय प्रेक्षणकर्ता कभी कभी किसी यंत्र तथा उपकरण का भी सहारा लेता है। छात्रों के मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रेक्षणकर्ता सारी प्रक्रियाएँ स्वयं करता है और किसी प्रकार के यंत्र तथा उपकरण का सहारा नहीं लेता है। सच्चाई यह है कि प्रेक्षण की उच्चतम विश्वसनीयता, वैधता तथा वस्तुनिष्ठता के लिए प्रेक्षण में वैज्ञानिक यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है। प्रेक्षण प्रविधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन चाहे जिस परिस्थिति में किया जाए और जिस किसी का भी हो क्यों ना किया जाए, प्रेक्षणकर्ता या शोधकर्ता के सामने प्रेक्षण से संबंधित मूल रूप से तीन तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रेक्षणकर्ता इन समस्याओं से अवगत हो सकता है या नहीं भी। ये समस्याएं प्रॉब्लम्स नामांकित हैं। एक, प्रेक्षण में कितना नियंत्रित रखा जाए तथा कितनी स्वच्छंदता बरती जाए। दो, प्रेक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए। क्या प्रेक्षक प्रेक्षण की जाने वाली परिस्थिति में वह तटस्थ रहे या उसमें सक्रिय भाग ले। तीन, प्रेक्षण को किस रूप में लेकर उसका वास्तविक प्रयोग किया जाए। क्या प्रेषित व्यवहारों को विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जाए या प्रेषित व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं की मात्राओं का मात्र रिकॉर्ड करके उसका अध्ययन किया जाए। प्रेक्षण इन तीनों समस्याओं पर आधारित प्रेक्षण प्रविधि के मुख्य तीन प्रकार बतलाए गए हैं। और पहली समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रेक्षण के दो प्रकार बतलाए गए हैं, नियंत्रित प्रेक्षण तथा अनियंत्रित प्रेक्षण। ब, दूसरी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रेक्षण के भी दो प्रकार बतलाए गए हैं, सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण। पैराग्राफ चेंज स, प्रेक्षण की तीसरी और अंतिम समस्या के आधार पर प्रेक्षण को अन्य दो भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण व्यवस्था तथा रेटिंग व्यवस्था, रेटिंग सिस्टम। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि प्रेक्षण के प्रमुख छह प्रकार टाइप्स हैं। इनका उपयोग शोधकर्ता शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आंकड़े डेटा संग्रहण करने के लिए करता है। इन सभी प्रकारों का वर्णन हम अगले स्वतंत्र अनुच्छेदों में करेंगे। पैराग्राफ चेंज और नियंत्रित प्रेक्षण बनाम अनियंत्रित प्रेक्षण, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित प्रेक्षण अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में अक्सर एक स्वाभाविक परिस्थिति नेचुरल सेटिंग्स होता है जिसमें प्रेक्षणकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों या किसी घटना का प्रेक्षण करते हैं। इसे स्वाभाविक प्रेक्षण न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। प्रायः ऐसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को यह पता होता है कि कोई उनके व्यवहारों का प्रेक्षण कर रहा है। गुडे तथा हार्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, अधिकतर अनियंत्रित प्रेक्षण में परिस्थिति स्वाभाविक होता है और जिन्हें प्रेक्षण किया जा रहा है वे इस बात से अवगत रहते हैं कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अनियंत्रित प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता न तो कोई अस्पष्ट नियम कोई अपनाता है और न ही किसी वैज्ञानिक तार्किक क्रम पर अपने प्रेक्षण को आधारित करता है। इसलिए इस तरह के प्रेक्षण को अक्रमवत प्रेक्षण, अनसिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। जैसे जब कोई शोधकर्ता बस में बैठे बैठे व्यक्तियों की भीड़ व्यवहार का अचानक प्रेक्षण शुरू कर देता है तो यह अनियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध प्रेक्षण का उदाहरण होगा। इस ढंग के प्रेक्षणों का प्रयोग समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री अपने अपने शोध समस्याओं के बारे में आंकड़ा संग्रहण करने के लिए काफ़ी करते हैं। पैराग्राफ चेंज, अभी हाल में शोधकर्ता एक विशेष तरह के स्वाभाविक प्रेक्षण करके व्यवहारों का अध्ययन करते पाए गए हैं जिसे क्रमबद्ध स्वाभाविक प्रेक्षण कहा गया है। हीमैन 1995 के अनुसार इस तरह का प्रेक्षण भी स्वाभाविक प्रेक्षण के समान होता है जिसमें व्यवहारों का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति में होता है और ऐसे व्यवहारों में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। क्रमबद्ध स्वाभाविक प्रेक्षण मात्र इस अर्थ में स्वाभाविक प्रेक्षण से भिन्न होता है कि इसमें शोधकर्ता एक विशेष व्यवहार एवं विशेष परिस्थिति में जिसमें व्यवहार का प्रेक्षण किया जाना है कि पहचान कर लेता है ताकि शोधकर्ता अपने प्रेक्षण में अधिक क्रमबद्धता दिखला सके। जैसे हेसलिन एवं वॉस द्वारा उन लोगों का अशाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना जो हवाई अड्डा पर मिले थे तथा पेलेग्रिनी द्वारा खेल के मैदान में बच्चों के विशेष तरह के खेल का प्रेक्षण किया जाना क्रमबद्ध स्वाभाविक प्रेक्षण का उदाहरण है। इस तरह के प्रेक्षण का उपयोग पशुओं के व्यवहारों के अध्ययन में भी काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे वोएस्क एकरमैन तथा वोएस्क 1993 ने एक ऐसा अध्ययन किया जिसमें जंगली वन मानुषों द्वारा स्वाभाविक औजारों के उपयोग का प्रेक्षण किया गया। पैराग्राफ चेंज, नियंत्रित प्रेक्षण में स्थिति कुछ दूसरी होती है। इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार प्रेक्षण करता है। इस तरह के प्रेक्षण की नियमावली एक वैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम पर आधारित होती है। नियंत्रित प्रेक्षण में परिस्थिति यदा कदा स्वाभाविक भी हो सकती है परंतु अक्सर इसमें परिस्थिति काफ़ी नियंत्रित रहती है ताकि अवांछित तत्वों का प्रभाव प्रेक्षण पर न पड़ सके। इस ढंग के प्रेक्षण को क्रमबद्ध प्रेक्षण सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। चूँकि नियंत्रित प्रेक्षण एक प्रकार का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण है अतः इसमें प्रेक्षणकर्ता एक पूर्व योजना बनाकर कार्य करता है। प्रेक्षण की पूर्व योजना बनाते समय प्रयोगकर्ता को तरह तरह के निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि किन किन परिस्थितियों में वह किन किन व्यवहारों का प्रेक्षण करेगा, कितने समय तक अमुक व्यवहार का प्रेक्षण करेगा, इसके प्रेक्षण में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, प्रेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण वह कैसे करेगा आदि। पैराग्राफ चेंज, नियंत्रित प्रेक्षण का उद्देश्य एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विश्वसनीय रिलायबल तथा वैध आंकड़ों को संग्रहण करना होता है अतः इसका उपयोग व्यवहार परक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र में अधिक होता है। नियंत्रित प्रेक्षण एक विशेष अर्थ में अनियंत्रित प्रेक्षण से श्रेष्ठ माना जाता है। नियंत्रित प्रेक्षणकर्ता द्वारा प्राप्त आंकड़े और उसके आधार पर फिर प्राप्त अंतिम निष्कर्ष में वैधता तथा विश्वसनीयता अधिक होता है। अनियंत्रित प्रेक्षण में इस ढंग की वैधता तथा विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है। पैराग्राफ चेंज, ब सहभागी प्रेक्षण बनाम असहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण के दौरान अपनाए गए भूमिका के आधार पर प्रेक्षण के दो प्रकार बतलाए गए हैं, सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वैसा प्रेक्षण होता है जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाता है। अतः इस ढंग के प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। सचमुच में इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षक का उद्देश्य व्यवहारों का ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना होता है और एक इस ख्याल से ही वह समूह की क्रियाओं में हाथ बटाता है। प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहार के हर पहलू के बारे में अपना विस्तृत रिकॉर्ड प्रेक्षण के जगह पर ऑन द स्पॉट तैयार कर लेता है और बाद में उसका विश्लेषण कर वह यह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के समूह का पूर्णकालीन सदस्य भी बनकर कार्य कर सकता है या अंशकालीन सदस्य बनकर भी कार्य कर सकता है, चाहे उसकी सदस्यता जिस प्रकार की हो। वह सक्रिय रूप से समूह की क्रियाओं में भाग लेता है। सहभागी प्रेषण प्रायः असंरचित तथा असंगठित होता है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के प्रेषण में प्रेषक को इस बात की छूट होती है कि वह स्वयं ही यह निश्चित करे कि उसे क्या करना है, कैसे प्रेषण करना है तथा कितना समय तक प्रेषण करना है। इस तरह से वह परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार अपने प्रेषण के विषय वस्तु एवं कार्यक्रम में परिवर्तन भी लाता है। इस तरह के प्रेषण में प्रेषक अपना परिचय सदस्यों से प्रायः छिपा कर रखता है या कोई ऐसी भूमिका अपना कर समूह में प्रवेश करता है जिससे प्रेषण किए जाने वाले व्यवहार का पैटर्न प्रभावित ना हो। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह अपना परिचय हमेशा छिपा कर ही रखे। हाँ, ऐसा करने से उसे कुछ लाभ अवश्य होता है, इसलिए प्रायः वह अपना परिचय छिपा कर ही रखता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब व्यक्तियों को यह पता चलता है कि उसकी उनके बीच कोई एक प्रेक्षक भी है तो उनके व्यवहारों का प्रेक्षण कर रहा है, तो वह बिल्कुल ही स्वाभाविक ढंग से व्यवहार करता है। उसके भिन्न भिन्न व्यवहारों के पैटर्न में कोई दिखावापन नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज, सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की सफलता अन्य बातों के अलावा दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक यह है कि इसमें प्रेक्षक को उन व्यक्तियों के साथ एक सौहार्दयुक्त संबंध बनाकर रखना चाहिए जिनके व्यवहारों का प्रेक्षण उसे करना है, अन्यथा वे लोग उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे और तब एक वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षण करना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि प्रेक्षक को हमेशा एक उत्तरदायी ढंग से उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए जिनके व्यवहारों को प्रेक्षण किया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि प्रेक्षक उन व्यक्तियों के साथ एक ढंग का व्यवहार करते हैं जिससे यह पता चलता है कि वह उन लोगों से बुद्धि तथा सूझबूझ में श्रेष्ठ हैं। प्रेक्षक को इस ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से संभव है कि उन्हें प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों का उत्पन्न सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसका एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण के लिए आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज, सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ गुण तथा दोष है, इनके प्रमुख गुण निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज, एक, इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक संदर्भ में करता है, फलस्वरूप वह व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहारिक पहलू जिससे किसी व्यवहार का विशेष अर्थ समझा जा सकता है को सही सही रिकॉर्ड कर उसका विश्लेषण करने में समर्थ होता है। इससे उसके परिणाम की सार्थकता काफ़ी बढ़ जाती है। पैराग्राफ चेंज दो, प्रायः यह देखा गया है कि सहभागी प्रेक्षण कई दिनों तक चलता है, परिणामस्वरूप जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे काफ़ी विस्तृत तथा अर्थपूर्ण होती हैं। उनका विश्लेषण करने से प्राप्त परिणाम अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की कहीं अधिक अर्थपूर्ण होता है। पैराग्राफ चेंज, सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ दोष भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, चूँकि प्रेक्षक इस विधि में व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है जबकि वह जानता है कि इन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वह समूह में अपना विशेष पद बना लेता है और अपनी सक्रियता कम कर देता है। परिणामस्वरूप वह बहुत सारे वास्तविक अंतर्क्रियाओं की रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है और उसका प्रेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने इस विशेष रोल या भूमिका द्वारा समूह के पूरे सदस्य के व्यवहार के पैटर्न को ही बदल देता है। दो, प्रेक्षक धीरे धीरे अपनी मानवीय कमजोरियों को दिखाना शुरू कर देता है। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ समय के बाद प्रेक्षक समूह के अन्य व्यक्तियों के तथा सांवेगिक रूप से उलझ जाता है। वह किसी दुखद घटना के होने पर अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सहानुभूति दिखलाने लगता है। व्यक्तियों के व्यवहार पर इन घटनाओं के प्रभाव को रिकॉर्ड करना भूल कर वह अपना समय सहानुभूति दिखलाने में व्यर्थ बर्बाद कर देता है। इतना ही, संवेगी उलझन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का स्तर अधिक होता है, उसके प्रेक्षण में आत्मनिष्ठता उतनी ही बढ़ती जाती है। तीन, सहभागी प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ों में प्रायः मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है। इसका कारण यह है कि धीरे धीरे प्रेक्षक का अनुभव इस हद तक बदल जाता है कि वह व्यक्तियों के व्यवहारों का सही सही प्रेक्षण नहीं कर पाता। फलस्वरूप दूसरे प्रेक्षक द्वारा किया गया प्रेक्षण पहले प्रेक्षक के से काफ़ी भिन्न हो जाता है। इस तरह से प्रेक्षण का मानकीकरण काफ़ी कम हो जाता है। दो, प्रेरक चेंज। चार, प्रेक्षण में चूंकि प्रेक्षक किसी तरह के जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, अतः उसे उन समय तक इंतज़ार करना होता है जब तक कि सदस्यों द्वारा अमुक तरह की अंतःक्रिया स्वयं न कर ली जाए। इससे समय की काफ़ी बर्बादी होती है। यह अवगुण असहभागी प्रेक्षण के साथ भी सही उतरता है। पैराग्राफ चेंज, असहभागी प्रेक्षण। ऐसे प्रेक्षण को कहा जाता है जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है परंतु स्वयं व्यक्तियों के क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता। ब्लैक तथा चैंपियन 1976 ने असहभागी प्रेक्षण नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को परिभाषित करते हुए कहा है, अंडर ब्रैकेट, असहभागी प्रेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है परंतु प्रेक्षित व्यवहारों में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है। पर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इस सरल परिभाषा से यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि इस तरह का प्रेक्षण सहभागी प्रेक्षण से भिन्न है क्योंकि यहाँ प्रेक्षक की भूमिका तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय होती है जबकि सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक में उसकी भूमिका सक्रिय होती है। पैराग्राफ चेंज, असहभागी प्रेक्षण संगठित या संरचित होता है। फलस्वरूप प्रेक्षक पहले से इस बात की पूर्व योजना कर लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा। प्रेक्षकों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, आंकड़ों में कहां तक सादृश्य मूलता रिप्रेजेंटेटिवनेस होगी तथा किस ढंग से उसका विश्लेषण किया जाएगा आदि। असहभागी प्रेक्षण एक दूसरे अर्थ में भी सहभागी प्रेक्षण पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से भिन्न होता है। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा रहता है परंतु असहभागी प्रेक्षण में प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के बीच बैठकर ही उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है, अतः उनका परिचय छिपा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, कुछ अध्ययन ऐसे अवश्य किए गए हैं जिसमें असहभागी प्रेक्षण की विधि तो अवश्य अपनाई गई है परंतु प्रेक्षण एक तरफा शीशा के पीछे छिपा रहता है जहाँ वे सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का तो प्रेक्षण करता है परंतु उसे कोई नहीं देख पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि असहभागी प्रेक्षण नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कभी भी पूर्ण रूपेण असहभागी नहीं हो सकता। प्रेक्षक को किसी न किसी ढंग से व्यक्तियों के साथ कार्य में कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य बटाना पड़ता है, अतः असहभागी प्रेक्षण को गुडे तथा हॉट 1987 ने अर्ध असहभागी प्रेक्षण कहा है। पैराग्राफ चेंज, असहभागी प्रेक्षण के कुछ गुण तथा दोष हैं। इसके प्रमुख गुण निम्नांकित हैं। एक, असहभागी प्रेक्षण चूंकि संरचित या संगठित होता है इसलिए इसके प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय, निरूपक तथा निर्भर योग्य होते हैं। संरचित होने से प्रेक्षक प्रेक्षण के भिन्न भिन्न पहलुओं एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करता है और उससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में पहले से एक निर्णय कर रखता है। दो, असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक अध्ययन किए जाने वाले व्यवहारों के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान दे पाता है तथा उससे संबंधित जांच प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए वह अधिक से अधिक अवसर निकाल पाता है। इन गुणों के बावजूद असहभागी प्रेक्षण के कुछ दोष भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, असहभागी प्रेक्षण का सबसे बड़ा दोष यह बतलाया गया है कि इस तरह के प्रेक्षण में व्यक्तियों का व्यवहार बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं होता है क्योंकि व्यक्तियों के मन में हमेशा यह बात रहती है कि उनके व्यवहार का प्रेक्षण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। परंतु इस अवगुण या दोष के विरोध में भी तर्क दिए गए। तर्क देते हुए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन के बाद से व्यक्तियों का व्यवहार बिल्कुल ही समाप्त एवं स्वाभाविक हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी तक कोई ऐसा प्रयोगात्मक सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक की उपस्थिति से अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार की स्वाभाविकता प्रभावित हो जाती है। ब्लैक तथा चैंपियन 1976 ने ठीक ही इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि असहभागी प्रेक्षक की उपस्थिति का कुप्रभाव अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार पर पड़ता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दो, कुछ समाज वैज्ञानिकों सोशल साइंटिस्ट का मत है कि जिस तरह सहभागी प्रेक्षण में परिस्थिति बिल्कुल ही स्वाभाविक होती है, उसी तरह की परिस्थिति असहभागी प्रेक्षण में नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में उपस्थिति सभी व्यक्ति इस बात से काफ़ी सचेत रहते हैं कि कोई अजूबा व्यक्ति उनके बीच है जो पता नहीं क्या क्या देख रहा है, सुन रहा है तथा समझ रहा है। पैराग्राफ चेंज। सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षण की कौन अधिक उपयुक्त विधि है, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यवहार का अध्ययन किस तरह की परिस्थिति में किस उद्देश्य से किया जा रहा है। परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि सहभागी प्रेक्षण विधि का व्यवहार विधि का उपयोग वहाँ अधिक लाभप्रद होता है जब शोधकर्ता को अन्य दूसरी विधियों से आंकड़ों को संग्रहण करने में अधिक दुर्लभता महसूस हो। सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पैराग्राफ चेंज। सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में प्रमुख समानता यह है कि ये दोनों ही स्वाभाविक परिस्थितियों में किए जाते हैं, फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है जो निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज। एक, सहभागी प्रेक्षण विधि जो जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है, जबकि असहभागी प्रेक्षण में यह व्यक्तियों के इन क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता है और निष्क्रिय रूप से वह इन क्रियाओं का प्रेक्षण करता है। पैराग्राफ चेंज। दो, सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा रहता है, परंतु असहभागी प्रेक्षण में प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के बीच बैठकर उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है, अतः उनका परिचय छिपा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में जिसमें असहभागी प्रेक्षण की विधि तो अपनाई गई है, परंतु साथ ही साथ प्रेक्षक एक तरफा शीशा वन वे ग्लास के पीछे छिपा रहता है, जहाँ से वह सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का तो प्रेक्षण करता ही है, परंतु इसे कोई देख नहीं पाता है। पैराग्राफ चेंज। तीन, सहभागी प्रेक्षण असंगठित या असंरचित होता है, जबकि असहभागी प्रेक्षण संगठित या संरचित होता है। पैराग्राफ चेंज। सौ, वर्गीकरण व्यवस्था तथा रेटिंग व्यवस्था। वर्गीकरण व्यवस्था विधि कैटेगरी सिस्टम मेथड प्रेक्षण का एक प्रमुख प्रकार है। इस विधि में प्रेक्षणकर्ता व्यक्तियों के व्यवहारों को विभिन्न वर्गों में बांटते हुए उनका अभिलेखन करता है। किसी भी अध्ययन में वर्गीकरण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोध समस्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है। वर्गीकरण व्यवस्था के स्वरूप से तात्पर्य वर्गों के प्रकार, वर्गों की संख्या, विभिन्न तरह के व्यवहारों के अध्ययन में उन वर्गों की उपयोगिता की सीमा आदि से होता है। जब प्रेक्षण विभिन्न वर्गों में बांट कर किया जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि इससे प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित सभी वस्तुओं का अभिलेखन हो जाता है, फलतः प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम भी निर्भर योग्य होता है। पैराग्राफ चेंज। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण व्यवस्था द्वारा मानव व्यवहारों का प्रेक्षण कर अपने शोध समस्या का अध्ययन किया है। सबसे मशहूर एवं प्रचलित वर्गीकरण व्यवस्था कैटेगरी सिस्टम बेल्स द्वारा विकसित किया गया। इसका प्रयोग बेल्स ने समूह व्यवहार के अध्ययन करने के लिए किया था। बेल्स के वर्गीकरण व्यवस्था में कुल 12 वर्ग हैं। प्रेक्षक को इन वर्गों को पहले ही याद कर लेना होता है ताकि जब वे समूह व्यवहार का अध्ययन करने बैठे तो वे प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को झट से किसी उपयुक्त वर्ग में डाल दें। बेल्स द्वारा प्रतिपादित 12 वर्गों को तालिका 13 में दिखलाया गया है। इन 12 वर्गों को बेल्स के 4 प्रमुख क्षेत्रों में समूहन किया है। सामयिक धनात्मक अनुक्रिया, इमोशनली पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जिसमें क्रम संख्या 1 से 3 तक की क्रियाएं आती हैं। समस्या समाधान अनुक्रियाएं उत्तर जिसमें क्रम संख्या 4 से 6 तक की क्रियाएं आती हैं। सामान्य समस्या समाधान अनुक्रियाएं प्रश्न जिसमें क्रम संख्या 7 से 8 तक की अनुक्रियाएं आती हैं तथा संवेगिक ऋणात्मक अनुक्रियाएं जिसमें क्रम संख्या 10 से 12 तक की क्रियाएं आती हैं। बेल्स द्वारा प्रतिपादित इस वर्गीकरण व्यवस्था को अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण इंटरैक्शन प्रोसेस एनालिसिस की संज्ञा दी गई है। बेल्स के इस वर्गीकरण व्यवस्था की सफलता से प्रभावित होकर फ्लैंडर्स 1970 ने अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के बीच वर्ग में होने वाले अंतःक्रियाओं के विश्लेषण में किया। फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण ने कुछ 10 वर्ष कैटेगरीज हैं जिन्हें तालिका 14 से दिखलाया है। पैराग्राफ चेंज। तालिका 14 से स्पष्ट है कि फ्लैंडर्स ने 10 वर्गों को मूलतः 2 भागों में बांटा है, शिक्षक वार्ता टीचर टॉक तथा छात्र वार्ता स्टूडेंट टॉक। 10वीं वर्ग खामोशी साइलेंस या संभ्रांति का है जिसमें उन क्षणों को रखा जाता है जब वर्ग में शिक्षक या छात्र दोनों चुप हो जाते हैं या जिनके अंतःक्रियाओं में कुछ संभ्रांति कन्फ्यूजन में उत्पन्न हो जाता है। शिक्षक वार्ता टीचर टॉक को पुनः 2 समूह में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव। 1 प्रशिक्षित प्रेक्षण वर्ग में बैठक शिक्षक छात्र में चल रहे अंतःक्रियाओं को उन्हें 10 वर्गों में बांटते हुए अभिलेखन करता जाता है। तालिका 14 फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था। वर्गीकरण व्यवस्था विधि का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस विधि द्वारा स्फूर्त समस्या के बारे में संग्रहण किए गए आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, परंतु दोष यह बतलाया गया है कि यह एक खर्चीला तथा अधिक समय एवं श्रम लेने वाली विधि है। पैराग्राफ चेंज। रेटिंग व्यवस्था एक दूसरे प्रकार की प्रेक्षण विधि है जिसके द्वारा भी मनोविज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र की शोध समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़ों को संग्रहण किया जाता है। रेटिंग मापनी का प्रयोग इन विज्ञानों में सर्वाधिक किया जाता है जिसके 2 महत्वपूर्ण कारण बतलाए गए हैं। पहला कारण तो यह है कि रेटिंग मापनी का निर्माण काफ़ी आसान होता है तथा दूसरा कारण यह है कि रेटिंग मापनी द्वारा शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रहण करने में काफ़ी कम समय लगता है। रेटिंग मापनी की महत्ता को देखते हुए इसका वर्णन हम विस्तारपूर्वक अगले अनुच्छेद में अलग करेंगे। पैराग्राफ चेंज। प्रेक्षण विधि की उपयोगिता एवं लाभ। यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रेक्षण विधि के कुछ खास खास विशेष उपयोगिताएं हैं जिनसे लाभान्वित होकर शोधकर्ता उसके प्रयोग के लिए ललायक रहता है। कुछ ऐसे ही प्रमुख उपयोगिता एवं लाभों का वर्णन इन शब्दों में किया जा सकता है। 1 प्रेक्षण विधि में व्यक्तियों के व्यवहारों घटनाओं एवं वस्तुओं को ठीक उसी रूप में अध्ययन किया जाता है जिस रूप में वह अवतरित होता है। इसका विशेष लाभ यह होता है कि इस विधि द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों में विश्वसनीयता अधिक होती है, फिर भी शोध समस्या के बारे में लिया गया अंतिम निष्कर्ष भी अधिक वैध होता है। आंकड़े संग्रहण करने की अन्य विधि जैसे साक्षात्कार विधि प्रश्नावली विधि में इस ढंग की सुविधा प्राप्त नहीं है। 2 इस विधि द्वारा शिशुओं एवं पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने में विशेष सुविधा होती है क्योंकि पशु एवं शिशु अपनी मनोवृत्तियों एवं इच्छाओं को ऐसे स्पष्ट शब्दों में बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं जिसके आधार पर कोई अर्थ निकाला जा सके। अतः उनके व्यवहारों को मात्र प्रेक्षण करके ही समझा जा सकता है तथा उससे कोई अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। अनेक शोध वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग बच्चों एवं पशुओं के व्यवहारों में सफलतापूर्वक किया है। स्पेस तथा वोल्फ द्वारा बच्चों पर तथा हार्लो द्वारा बंदरों पर किए गए अध्ययन इसके विशेष उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज 3, प्रेक्षण विधि द्वारा हम उन व्यक्तियों के भी व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं जो प्रेक्षण की भाषा नहीं जानते हैं। जैसे यदि प्रेक्षक को ऐसे विदेशियों फॉरेनर्स के व्यवहारों का अध्ययन करना है जो उनकी भाषा नहीं जानते हैं जो तो इस विधि द्वारा आसानी से उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज 4, प्रेक्षण विधि का उपयोग उन परिस्थितियों में भी आसानी से किया जाता है जहाँ व्यक्ति शोध समस्या के बारे में कुछ उत्तर देने के लिए तैयार न हो या व्यक्तियों को यह भय बना रहता है कि उत्तर देने से उनका नाम भी उसके सब साथ छाप दिया जाएगा या लोग उसे निम्न स्तर का समझेंगे। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करके ही शोधकर्ता आसानी से एक निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। पैराग्राफ चेंज 5, प्रेक्षण विधियों का प्रयोग विभिन्न शोध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे प्रेक्षण विधि का प्रयोग अन्य विधियों से संग्रह किए गए तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के लिए की जाती है। कुछ लोगों ने इस प्रेक्षण विधि का प्रयोग प्रयोगशाला परिस्थिति तथा जिंदगी की वास्तविक परिस्थिति में आंकड़े संग्रहण करने के लिए भी किया है। 6, प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड में सरलता सिंप्लिसिटी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी तथा सत्यापन वेरिफिकेशन की सुविधा होती है। अतः इस विधि की उपस्थिति का क्षेत्र अन्य विधियों की उपयोगिता के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। प्रेक्षण विधि की परिसीमाएं लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। यद्यपि प्रेक्षण विधि का प्रयोग शोध समस्याओं के बारे में आंकड़े संग्रह करने में काफ़ी किया जाता है फिर भी इस विधि की कुछ परिसीमाएं हैं जिनके कारण इस विधि के प्रयोग में काफ़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। प्रमुख परिसीमाएं निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज 1, प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड की सबसे प्रमुख परिसीमा यह बतलाया गया है कि इस विधि द्वारा प्राणी के उन व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है जो आंतरिक हैं या जो बाह्य रूप से दर्शनीय हैं जैसे प्राणी की भावनाओं संवेदनाओं तथा व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन इस विधि द्वारा संभव नहीं है क्योंकि ये सभी बाह्य रूप से दर्शनीय नहीं हैं अर्थात वे आंतरिक हैं। पैराग्राफ चेंज 2, प्रेक्षण विधि में सामान्यतः प्रेक्षक यह कोशिश करता है कि वह घटनाओं या व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति नेचुरल सेटिंग में करे। इसके लिए इस स्वाभाविक परिस्थिति के अपने आप उत्पन्न होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और चूंकि इस प्रकार की घड़ी अनियत होती है इसलिए प्रेक्षक का धैर्य और अभिरुचि दोनों ही समाप्त होता दिखता है। उदाहरणार्थ यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि युद्ध का प्रभाव व्यक्ति की मनोदशा पर क्या पड़ती है तथा युद्ध छिड़ जाने पर उनके व्यवहारों में किस तरह के परिवर्तन आते हैं तो उसे स्वभावतः उस समय तक इंतज़ार करना होता है। जब तक कि युद्ध प्रारंभ न हो जाए और युद्ध कब प्रारंभ होगा इसका पूर्वानुमान चूंकि प्रत्येक के बस की चीज़ नहीं है इसलिए वह इस विधि द्वारा आंकड़े संग्रह करने का विचार छोड़ देता है और कोई दूसरी विधि की खोज में अग्रसर हो जाता है। पैराग्राफ चेंज 3, व्यक्ति के कुछ व्यवहार तथा कुछ घटना चक्र की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे पति पत्नी के नैतिक व्यवहार व्यक्तिगत पारिवारिक घटनाएं, विशेषकर अप्रिय घटनाएं तथा जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज 4, अक्सर यह देखा गया है कि जब व्यक्तियों को यह पता चल जाता है कि उसके व्यवहार को कोई विशेष व्यक्ति प्रेक्षण का पर अध्ययन कर रहा है तो वह अपना स्वाभाविक व्यवहार बदल लेता है और कुछ अस्वाभाविक व्यवहार करना शुरू कर देता है। इस तरह के अस्वाभाविक व्यवहार के अध्ययन के बाद शोधकर्ता जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह निश्चित रूप से न तो विश्वसनीय और न ही वैलिड ही होता है। पैराग्राफ चेंज 5, प्रेक्षण विधि में आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है। अन्य बातों के अलावा प्रेक्षण विधि प्रेक्षक के प्रत्यक्षण उद्देश्य तथा ज्ञान द्वारा सीधे प्रभावित होती है। प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक आंकड़ों में यदि अपनी शिक्षा से या अपने पूर्वाग्रह के अनुकूल कुछ आवश्यक अनावश्यक जोड़ घटाव करना चाहे तो वे आसानी से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि प्रेक्षण विधि में आत्मनिष्ठ कार्य को सब्जेक्टिव फैक्टर्स का हाथ होने से उसके परिणाम की निर्भरता समाप्त हो जाती है। इन परिसीमाओं के बावजूद प्रेक्षण विधि का प्रयोग उसकी सरलता, सुगमता तथा विश्वसनीयता के कारण व्यवहारपरक शोधों में काफ़ी होता है।